नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव को खारिज किया। ईरान ने संघर्ष समाप्त करने के लिए 5 शर्तें रखी। इसराइल ने कहा ईरान की धमकियां बेअसर होने तक युद्ध जारी रहेगा। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अमेरिका के युद्ध उपमंत्री एल्ब्रिज कोलबी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। बांग्लादेश ने निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान के क्रूर सैन्य दमन के पीड़ितों की याद में नरसंहार दिवस मनाया। और बैंकॉक में तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत ने 2 कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि वो युद्ध केवल अपनी शर्तों और समय सीमा के अनुसार समाप्त करेगा। आज ईरान ने अपने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होती वो अपनी रक्षा के लिए दुश्मनों पर कड़े हमले जारी रखेगा। अधिकारी ने कहा कि अमरीका के प्रस्ताव ईरान को गैर जरूरी लगते हैं। अधिकारी के अनुसार इन शर्तों में आक्रामकता और हत्याओं पर पूर्ण विराम, ईरान पर युद्ध को पुनः थोपे जाने से रोकने के लिए ठोस तंत्र की स्थापना, युद्ध क्षतिपूर्ति का गारंटीकृत और स्पष्ट भुगतान, क्षेत्र में शामिल सभी प्रतिरोध समूहों के लिए सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति और होर्मुज जल डमरू मध्य पर संप्रभु अधिकार की मान्यता शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों में समझौते पर चर्चा के लिए 1 महीने का युद्ध विराम और ईरान की परमाणु हथियार क्षमता का पूर्ण अंत शामिल है। भारत में इसराइल के राजदूत रूवेन अजार ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि ईरानी खतरों को बेअसर किए जाने तक इसराइल अपने हमले जारी रखेगा। ईरान द्वारा कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर के मुख्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइल हमलों के बाद कतर एनर्जी ने कई दीर्घकालिक तरलीकृत गैस आपूर्ति एलएनजी अनुबंधों को पूरा करने से मना कर दिया है। कतर द्वारा गैस की आपूर्ति करने से मना किए जाने पर दक्षिण कोरिया, चीन, इटली और बेल्जियम के खरीदारों के प्रभावित होने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
ईरान की मिसाइलों ने 18 और 19 मार्च को रास लफान पर हमला किया। इस हमले में 2 एलएनजी उत्पादन संयंत्र और एक गैस से तरल पदार्थ निर्मित करने वाले संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गए। इन हमलों के कारण आग लग गई और लगभग 17% यानी प्रतिवर्ष 12.8 मिलियन टन कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता ठप हो गई। ये हमला ईरान के साथ जारी अमेरिका इसराइल संघर्ष से जुड़े बढ़ते तनाव के बीच हुए हैं। इसमें तेहरान खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना को लगातार निशाना बना रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य निकट कतर की स्थिति ने वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में व्यापक व्यवधान आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे वैश्विक एलएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं, एशिया और यूरोप में आपूर्ति का दबाव बढ़ सकता है और अमेरिका सहित वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की मांग में वृद्धि हो सकती है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
पश्चिम एशिया मुद्दे पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद भवन परिसर में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता की। इसमें गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित अन्य नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास और समाजवादी सांसद धर्मेन्द्र यादव तथा अन्य विपक्षी दलों के नेता भी बैठक में उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 26 करोड़ टन कच्चे तेल के शोधन की क्षमता है। पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। मैं बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें।
उन्होंने कहा कि सरकार पीएनजी विस्तार पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में पीएनजी कनेक्शन संबंधी आवेदन शुल्क और स्वीकृत समय सीमा को व्यवस्थित करने के लिए कल गजट अधिसूचना जारी की गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 50 भारतीय नाविकों को स्वदेश लाया गया है।
पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से संबंधित कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। हमारे 20 भारतीय ध्वज के जहाज, उसमें 540 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और उनसे डीजी शिपिंग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 50 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अमरीका की युद्ध मामलों के उपमंत्री एल्ब्रिज कोलबी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने श्री एल्ब्रिज के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। बांग्लादेश कोड नेम ऑपरेशन सर्चलाइट के अंतर्गत 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी बलों द्वारा क्रूर सैन्य हमलों के पीड़ितों की याद में आज नरसंहार दिवस मना रहा है। ये दिन देश के इतिहास के काले अध्यायों में से एक माना जाता है। इस दिन मुक्ति संग्राम के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, विशेष रूप से ढाका में विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों सहित निहत्थे बंगालियों का क्रूरता के साथ नरसंहार किया गया था। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का संदेश जारी किया। इसके जरिए उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष की भावना को संरक्षित करने की राष्ट्र की वचनबद्धता को दोहराया। बांग्लादेश में आज शाम राजबाड़ी के दौलतदिया फेरी टर्मिनल पर करीब 40 से 50 लोगों को ले जा रही एक यात्री बस पद्मा नदी में गिर गई, जिसके बाद एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया गया। कई यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को संबोधित पत्र में उन्होंने भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से तथा अपनी ओर से बांग्लादेश की जनता को शुभकामनाएं दीं। भारत ने प्रतिबंधित आतंकी गुट और उसके सदस्यों के समर्थन में पाकिस्तान की ओर से जारी बयान को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों और उसकी न्यायिक प्रक्रियाओं पर बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को वर्षों से प्रायोजित करने वाला देश इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को झूठ और गलत बयानबाजी करने के बजाय अपने यहां गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली आज भारत मंडपम में शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक सप्ताह तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर की 130 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। बैंकॉक में भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में आज 2 कांस्य पदक जीते। महिला रिकर्व में रूमा बिस्वास, कीर्ति और रिद्धि फोर की तिगड़ी ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुष कंपाउंड वर्ग में रजत चौहान, ऋषभ यादव और उदय कंबोज ने कांस्य पदक मुकाबले में भूटान को 232 के मुकाबले 234 अंक से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने अमरीका के शांति प्रस्ताव को खारिज किया। ईरान ने संघर्ष समाप्त करने के लिए 5 शर्तें रखीं। इसराइल ने कहा ईरान की धमकियां बेअसर होने तक युद्ध जारी रहेगा। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अमरीका के युद्ध उपमंत्री एल्ब्रिज कोलबी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। बांग्लादेश ने निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान के क्रूर सैन्य दमन के पीड़ितों की याद में नरसंहार दिवस मनाया। और बैंकॉक में तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत ने 2 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।